ஓம் சாந்தி. அபி பிரஷ்ன உத்தர் கா செஷன் ஹம் ஷுரு கரேங்கே. மே பிரஷ்ன புச்தி ஜாங்கி. வேசே தோ பஹுத் சாரே பிரஷ்ன ஆயே ஹே, தோ கோஷிஷ் கர்கே சபி பிரஷ்னோ கா உத்தர் தேனே கி கோஷிஷ் கர்தே ஹே. லேகின் சமய் வில் சி கேசா சல்தா ஹே. ஃபிர் ஹம் உத்தர் தேனே கே லியே ஹமாரே பீச் ஹே சுதேஷ் தீதி. சுதேஷ் தீதி கா பரிச்சய தோ பஹலா தின் ஹி ஹோ கியா தா, ஆர் கல் சவேரே 7 பஜே கா செஷன் பி சுதேஷ் தீதி ஆப்கே சாத் ஹே. சுதேஷ் தீதி லேங்கே கல் சவேரே கா செஷன் பி, லேகின் ஆஜ் கே பிரஷ்னோ கா உத்தர் பி தீதி தேங்கே. தீதி சப்சே பஹலா பிரஷ்ன ஹே, வித் க்ளோஸ்ட் ஆய்ஸ் ஐ ஃபீல் பெட்டர் டு டூ ராஜ்யோகா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வித் ஓப்பன் ஐஸ், ப்ளீஸ் கைட்.
ஓம் சாந்தி. அஃப்கோர்ஸ் அபியாஸ் கி பாத் ஹே, ஹம் சபக்கோ ஆப் சப் பி பகத் ஹே, பஹுத் சமய தக் பக்தி கி ஹே, ஹம்னே பி 3 சால் கி உமர் சே பக்தி ஷுரு கி ஹே. தோ பக்தி மே ஹமாரி பாவனா யஹி ஹோதி ஹே, அந்தர் கே பட் பஹர் கே பட் பந்த கர்கே அந்தர் கே பட் கோல். தோ ஹம்னே ஆதத் டால் தி ஹே கி யே ஆன்கே பந்த கர்கே ஃபிர் அந்தர் கி ஆன்க் கோல்னி ஹே. க்யூ ஆன்கே பந்த கர்னி ஹே பஹர்? பாய் ஆன்கே ஜோ ஹே நா வோ தோக்கா தேதி ஹே, கான்சென்ட்ரேஷன் நஹி ஹோனே தேதி, சீஸே இதர் உதர் தேக்தே ஹே தோ மன் பாக்தா ஹே, இஸ்லிய தியான் நஹி கர் சக்தே ஆன்கே கோல் கே. அச்சா, கித்னி தேர் ஆன்கே பந்த கர்கே யோக் கரேங்கே? ஆதா கண்டா, ஏக் கண்டா? கிஸ்லிய யோக் கர்னா சாத்தே ஹே? சாந்தி சாயே, பிரபு கா அந்தர் அந்தர் அனுபவ ஹோனா சாயே, கான்சென்ட்ரேஷன் சாயே, ஏகாகிரதா சாயே. அபி ஹம்கோ ஏகாகிரதா சாந்தி ஏக் கண்டே கே லியே சாயே? கித்னே வக்த கே லியே சாந்தி சாயே? சலோ 8 கண்டா தோ நீந்த கியா, 6 கண்டா நீந்த கியா, பாக்கி பாக்கி 20 கண்டா 19 கண்டே கியா கரனே? சாந்தி நீ சாயே கியா? தோ ஆன்கே பந்த கரனே கா க்யூ பந்த கர்தே ஹே? க்யூகி தேக்தி ஹே நா கோய் சீஸ் ஆன்கே தோ மன் தோடா பாக்னே லக்தா ஹே. அப் தோடா சோச்சியே, வாஸ்தவ மே ஆன்கே பந்த, ஆன்கோ கா கனெக்ஷன் மன் கி ஏகாகிரதா சே நஹி, ஆன்கே பந்த சே நஹி. அபி ஆப் ஆன்கே குலி பி ஹே நா, மிசால் கே தோர் பர் ஆப் கோய் சீஸ் லேனே ஜாதே ஹே, ஆஃபீஸ் மே ஆப்கோ ஜானா ஹே, மீட்டி பஹனே மீட்டே பாய், ஏக் ஏக் ரிக்வெஸ்ட் ஹே, மியூசிக் தோ ஆப்னே பஹுத் சுனா ஹே, தோ ஜின்கே பாஸ் பி மியூசிக் பிளேயர் ஹே நா, தோடா மியூசிக் பிளேயர் கோ சாந்தி தே தேங்கே. தோ பீச் பீச் மே தியான் ஜாதா ஹே, ஆப்கா தோ ஜரூரி காம ஹே, பர் தூசரே கே காம் ஜோ ஹே நா வோ மியூசிக் சுன்னே மே பி க்யா ஹோ ரஹா ஹே, தோ 5 மினிட் எக்ஸ்ட்ரா சங்கல்ப் சலனே லக்தே ஹே, ப்ளீஸ் ஏக் தோ கோ சஹயோக் தேவே. தோ அப்னே மியூசிக் பிளேயர் கோ சுலா தோ, டீக் ஹே நா? சமஜ் கயே நா? ஹான் ஜி, தேங்க் யூ. தோ அபி மிசால் கே தோர் பர் ஆப்கோ குச் ஆப் ஜல்தி மே ஆப்கோ ஃப்ரிஜ் கோலியே ஆப்னே, ஆப்கோ ஜூஸ் சாயே, ஃப்ரிஜ் ஆப்னே கோலியே, ஜூஸ் ஆப்கே ஆன்கோ கே சாம்னே படா ஹே, குச் ஓர் ஆப்கே அத்யான் மே ஹே, ஜூஸ் திகாயி நஹி படா, வாபஸ் ஆ கயே. அரே முஜே தோ ஜூஸ் லேனா தா, தூத் லேனா தா, ஆன்கே தோ குலியே நஹி தேகா நா. तो अगर मन कंसंट्रेशन में है तो आंखें डिस्टर्ब नहीं होती. अब आप समझो, मिसाल के तौर पर रास्ते चलते हैं, कोई कहता है वो फलाने केमिस्ट की दुकान है, मेरी दवाई ले आना. कहाँ है केमिस्ट की दुकान? अरे तुम रोज रास्ता पार करते हो, कहाँ है? ध्यान चलते रोज ध्यान नहीं दिया, आंखें खुली हैं, होता है ना बराबर ऐसे. तो जैसे आंखें खुले हुए भी मन कहीं और है तो आंखें ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होती. तो हम अभ्यास करते मन को आंखें खुले परमात्मा के साथ लगावें, क्योंकि जिसके साथ प्रीत होती है उसको आंखें बंद करके याद करने की जरूरत नहीं है। योग है परमात्मा के साथ प्रीत। आप अपने हस्बैंड को आंखें बंद करके याद करते हैं, बच्चे को बंद करके याद करते हैं आंखें, वाइफ को आंखें बंद करके याद करते हैं, बंद करके याद करते हैं, खुली याद करते हैं। तो परमात्मा मेरे साथ तम एव माता से पिता तम एव चमे बंधु च सखा तम एव सब रिश्ते आंखें बंद क्यों करूं। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, पॉइंट्स तो बहुत है पर फिर रखते हैं, अगर हमको समय की बचत करनी है और स्वाभाविक योग करना है तो अभी 10 घंटा समझो आंखें बंद तो नहीं करेंगे ना, बस स्टॉप पर खड़े हैं, आंखें खुली है नेचुरल प्रभु के प्रीत में मन जुटा हुआ है, ट्रेन में जा रहे हैं 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा याद कर सकते, खाना बना रहे हैं हाथ जल जाएगा आंखें बंद करके भगवान की याद में बनाएंगे तो स्वाभाविक याद रहे, समय की बचत रहे, नेचुरल कंसंट्रेशन रहे। इसलिए ये अभ्यास की बात है, अभ्यास कर लेंगे प्रीत जोड़ लेंगे तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अंदर की आंख खुल गई तो बाहर की आंखें किसी चीज को देखते डिस्टर्ब नहीं करती। और दूसरी बात, हम ये अभ्यास करते हैं मेन बात आंखें खुले हुए एक दो को आत्मा में देखने का, आंखें बंद करके किसको आत्मा कैसे देखेंगे, जिस्म का ना देखे, चमड़ी ना देखे, इस डब्बी में हीरा बैठा है। तो हम ये अभ्यास आंखें खोल के करते हैं। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, परंतु बहुत सारे प्रश्न है ना, इसलिए और ज्यादा इस पर नहीं बताते।
नेक्स्ट प्रश्न है, कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सहनशीलता है, क्षमा भाव है, सब कुछ है, बेसिकली मैं उस नेचर की हूँ, लेकिन लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उस मेरे स्वभाव को एक्सप्लॉइट किया है, मेरे सैक्रिफाइसेस और इन सभी बातों को, इसलिए मैं बहुत सफर किया है और उस पास्ट को मैं भूल नहीं सकती हूँ, तो इसके लिए करें क्या।
इसी के कनेक्शन का दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तो ठीक है, ओके। इसमें मेन बात है सहनशीलता है, क्षमा का भाव है, पर अभी सहन शक्ति चाहिए। सहनशीलता का मतलब यही है, नहीं है कि आपसे लोग नाजायज फायदा उठाएं, आप में सम्मान की शक्ति की जरूरत है। सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि कोई बेइज्जती करता रहे, कोई मजाक उड़ाता रहे, कोई फालतू निंदा करता रहे, हम सहन करते रहे, सहन करने की जरूरत ही नहीं है जब मैं अपने स्वमान में हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं स्वाभिमान, मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में हूं तो दूसरा कुछ बोल भी रहा है, डिज्नीलैंड में मैं देख रही हूं तमाशा, किसने बंदर की ड्रेस पहनी है, किसने शेर की ड्रेस पहनी है, किसने बालू की ड्रेस पहनी है, डिज्नीलैंड है तो उसमें अनेक प्रकार के पार्ट कोई प्ले कर रहे हैं, मुझे इतना अंदर न्यारापन रहे अपने आप में तो फिर उसकी अंदर की जो स्टेज है ना, मैं आत्मा समझ करके क्षमा करूंगी, फलाना है उसने मेरे इसको भूल की है, मैंने क्षमा किया तो भी बेफल उन्होंने रॉन्ग फायदा उठाया तो मेरा देह अभिमान तो नहीं गया ना, बेचारे की भूल की है, मैंने क्षमा किया है तो भूल जाऊं कि मैंने क्षमा किया है तो मेरा सम्मान रहेगा, दुख नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, दुख लेते हैं डिप्रेशन हो जाता है, नहीं भूल की, उन्होंने भूल की, मैंने भूल को क्षमा करके भूल जाऊं, इतना सम्मान चाहिए। तो सम्मान की कमी, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी के कारण सहनशीलता के गुण को दुख बना देते हैं, दुख नहीं है, सम्मान से सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है। नेक्स्ट,
मैं जानना चाहता हूं कि जब सभी शिव बाबा के संतान हैं तथा आपके अनुसार हम सब भाई बहने हैं तो ये सृष्टि आगे कैसे चलेगी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखिए मंदिर में आप रोज सदियों से कहते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते मैं सुख कनेरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। अच्छा, आपने भी आरती की मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, आपके बेटे ने भी कहा मात पिता हम शरण गहूं किसकी, आपके पोतरे पोतरी ने, ये नहीं कहा तुम दादा दादी मेरे हम पोतरा पोतरी तेरे, हे प्रभु आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मेरे हम ग्रैंड चिल्ड्रन तेरे, कभी कहा क्या ऐसा किसी ने? हमेशा कहते ना तुम मात पिता। तो किस नाते से? आत्मिक नाते से हम एक पिता परमात्मा की संतान है, पहली बात तो ये पक्की। दूसरा, फिर अभी साकार सृष्टि में जब हम मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला उससे रियलाइजेशन हुआ कि हम किस कुल के हैं, हम वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, देवता कुल के हैं। तो देवताएं, लक्ष्मी आती है घर में, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री देवियां, शक्तियां कैसे पैदा हुई थी, श्री रामचंद्र जी कैसे पैदा हुए, किसने खीर खाई, किसने फल खाया, किसी ने मंत्र पढ़ के सुनाया। तो अगर आप वो बातें सच्ची मानते हैं देवताओं को कि वो सचमुच ऐसे थे, ऐसे जन्म लिया, तो क्या आप देवता बन करके ऐसा आपके अंदर पवित्रता की शक्ति नहीं आ सकती? हमारे पूर्वज जिनके मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां उनकी बनी, अगर आप सच्ची भावना से मानते हैं कि वो ऐसे ही पैदा हुए थे, किसी भी देवता को विकार से नहीं दिखाते, या कि कौरवों को भी विकार से नहीं दिखाते, कौरव भी डेड बॉडी से वो मिसकैरेज हो गया और फिर 100 घी के टुकड़े डाले और 100 कौरव बन गए। पांडव कहां से पैदा हुए? कुंती से। कोई वरुण का देवता तो कोई अश्विनी कुमार का देवता तो कोई इंद्र देवता का बच्चा। तो आप हमारी सारी भक्ति शास्त्र पोथियां पढ़ते आते हैं, किसी का भी जन्म विषय विकार से नहीं है, और रोज आरती करते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सच्ची अर्जी डाली है या दिखावे की अर्जी डाल रहे हैं? ये जो भगवान के आगे रोज कहते हैं विषय विकार, विकार कौन से है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें काम विकार है, विषय है, ये विषय है। तो वो सच्ची भावना से अगर अर्जी डाली यार भगवान पतित पावन है, पापों को नाश करके पवित्र बनाने वाले हैं, तो ऐसी सृष्टि होती है जबकि पवित्रता की रचना होती है, परंतु पहले योग बल चाहिए ना। और रही अभी की बात, अभी समझो आप जैसी उम्र में आपको रचना रचनी है क्या? मेजोरिटी तो आपके बच्चे हो गए है ना अभी अभी आपको किस लिए, आपको चाहिए क्या ऐसी रचना? आपकी तो एज भी नहीं है। इसका मतलब अंदर से पवित्रता के संस्कार जागृत करने हैं। हम कौन? और वो पवित्रता की शक्ति एक आपको दिव्य बना देती है, दिव्यता की मूर्ति बना देती है, दर्शन मूर्त बना देती है। हम कहते हैं ग्रस्ती रहते ट्रस्टी बन के रहो, सन्यासी घर छोड़ गया, स्त्री को जीते जी विधवा बना के चला गया, महात्मा जी, महात्मा जी उनके चरण चूम रहे हैं, आपको घर में रहते पवित्र रहने में क्या मुश्किल है? ग्रेट सौभाग्य की बात है। तो सिर्फ रियलाइजेशन की बात है। सृष्टि कैसे चलेगी? सब तो पवित्र बनेंगे भी नहीं। हम जो यहां बैठे हैं, हम तो अपने पास धारणा रखे ना, दूसरों की चिंता करने से पहले मैं अपने आप को तो इतना पावरफुल बनाऊं। तो है ये सेल्फ रियलाइजेशन से दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आत्मिक बल से आत्मसंयम आता है, आत्मसंयम से स्वयं का दर्शन होता है, स्वयं के दर्शन से जीवन की पवित्रता का संयम नियम आने से दर्शन मूर्त बन जाते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट,
जब बेटी कुमारी होती है तो किसी के पाँव नहीं छूती, मगर जब वही बेटी कि शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में सबके पांव छूती है, तो उसका क्या कारण है?
यही कारण है ना, पहले कुमारी थी तो पवित्र थी, कुमारी थी, कन्या थी, पवित्र थी। जैसे ही उसकी पवित्रता भंग हुई, दूसरों के चरण छूने लग गई, पूजने के बदले पुजारी बन गई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वही कन्या आप चरण धो रहे हैं, कन्या है, कुमारी है, तो पवित्रता पूजनीय मूर्त बनाती है, अपवित्रता पुजारी बना देती है, भिखारी बना देती है, विकारी बना देती है, दुख की बीमारी अंदर ले आती है। नेक्स्ट,
क्या मृत्यु के बाद आत्मा उन्हीं संबंधों में फिर से जन्म लेती है?
क्या मृत्यु के बाद
जब आत्मा शरीर छोड़ती है, हाँ? तो पुनः उसी उन्हीं संबंध में, उसी परिवार में, उसी संगम संबंध में?
जरूरी नहीं है इमीडिएट उसी परिवार में ले वे, कर्मों के हिसाब किताब से जहाँ उसका लेन देन है, कहाँ बिजनेस के हिसाब से धोखा दिया है, धोखा लिया है, लेन देन में कुछ रह गई है बात, वहां लेना होगा तो किसका बेटा बनेगा, किसका बेटी बनेगा, कुछ देना होगा। तो ऐसा जहां जहां कर्मों का हिसाब किताब बनता है वहां जन्म होता है, तो कर्म संबंध से जन्म होता है, फिर भले परिवार में हो या फिर जो है कहां संबंध कोई और कनेक्शन भी, पॉसिबल है परिवार में भी, परंतु व्यापार के साथ भी जहां संबंधित है वहां भी जन्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, हाउ टू कंबाइन अवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विद प्रैक्टिकल कमर्शियल लाइफ। बीइंग अ स्टूडेंट आई ऑलवेज फेस अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन इनर सेल्फ, बट हाउ मच शुड आई कम्पीट एंड हाउ टू डील विद कॉम्पिटिशन नोइंग अवर स्पिरिचुअल ट्रूथ।
प्रैक्टिकल में देखें तो वास्तव में बिजनेस लाइफ में भी क्या चाहिए, बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, क्लीन, क्लीन, क्लियर बुद्धि एंड कंसंट्रेशन, क्लीन, क्लियर, क्लैरिटी चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए, उसके साथ चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट। तो जब सेल्फ रेस्पेक्ट में है तो बिजनेस में रहते हुए बेशक कितना भी कंपटीशन है, कितना भी दूसरे के अंदर जेलसी है, कितना भी किसी प्रकार का है, उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, और ही हम अपनी एनर्जी को सेव करके जैसे लोटस फ्लावर, लोटस कमल के फूल में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे इंसान न्यारा रह सकते हैं। तो ये अभ्यास होता है कि अब हमारे पास तो इतने जितने भी भाई बहन हैं सब घर में रहते हुए, सब तो कोई आश्रम पर नहीं रहते हैं, परसेंटेज में 9 लाख से भी ज्यादा भाई बहन हैं परिवार में रहने वाले, उसके हिसाब से आश्रम पर रहने वाले कितने थोड़े हैं, सब आश्रम पर तो नहीं रहते, घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं या जनरल जो भी जॉब करते हैं। इसमें भी ये रियलाइजेशन चाहिए कि कंपटीशन की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है, कॉम्पिटेंस की बात है। तो जितना जितना कॉम्पिटेंट है अपने अंदर और कॉन्फिडेंस है और कंसंट्रेशन है, क्लैरिटी है, करेज है, तो किसी भी प्रकार के बिजनेस में, वैल्यू बेस्ड बिजनेस है तो लाइफ की वैल्यू से हम उस चीज को फेस कर सकते हैं।
क्या स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाते हुए कंपटीशन छोड़ दे,
कंपटीशन करने, वास्तव में कंपटीशन है नहीं, कॉन्फिडेंस जब है, कॉम्पिटेंट है कोई, तो ऑटोमेटिकली हम कोई जेलेसी कैसे कंपटीशन नहीं कर रहे, क्वालिटी ऑटोमेटिकली बिना कंपीट किए भी अपना काम कंप्लीट करेगी, कंपटीशन से नहीं। कंपटीशन में तो एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, परंतु एम चाहिए। अब ये फर्क है, जेलसी बस कंपटीशन करेंगे तो टेंशन होगा, उसमें हमेशा फियर होगा कि दूसरा व्यक्ति मेरे को ओवरकम कर लेगा, परंतु जितना
एम्बिशन जरूर रखना है,
एम्बिशन जरूर रखना है। एक होती है डिजायर, दूसरी होती है विश, तीसरी होती है एम, चौथी है डिटर्मिनेशन, पांचवी है विल पावर। तो ऑटोमेटिकली उस विल पावर से कंपटीशन नहीं है, परंतु सहज ही हर चीज जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है, क्योंकि मेरा गोल क्या है और मेरा साथ कौन है, मेरा साथी कौन है। अकेला बिजनेस नहीं कर रहे, मेरा पार्टनर परमात्मा है, तो बैकबोन बहुत अच्छी पावर होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप द्वारा ध्यान में बैठने के लिए कोई स्मरण करने के लिए नाम दिया जाता है, माना मंत्र या नाम, जैसे भक्ति मार्ग में गुरु देते हैं ना, ऐसे दिया जाता है यहाँ?
नहीं, नाम तो वैसे प्रभु से बड़े प्रभु का नाम का मतलब क्या है कि भगवान की महिमा। मंत्र क्या है? मन को एकाग्र करने का एक संकल्प। तो हम जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो ज्ञान मिला हुआ है ना, तो ज्ञान के एसेंस को बुद्धि में रखते हैं, उसको मंत्र कह सकते हैं। मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप, विश्वास अंदर लेते, मैं शुद्ध शांत स्वरूप। शुद्धि और शांति से जो श्वास अंदर गया उसकी शक्ति से श्वास बाहर, तो श्वासोश्वास याद स्वाभाविक हो जाती है। मन को परमात्म स्मृति आत्मिक गुण को दोनों को इकट्ठा करके बैठने की, तो परमात्मा का नाम यानी परमात्मा की महिमा। फिर वो महिमा जो आपने सुनी है ना, वो अंदर विचार मंथन चलता रहता है। इसलिए ओम शांति मंत्र की तरह हम नहीं याद करते, पर ओम मैं आत्मा शांति शांत स्वरूप, रटने की बात नहीं है, बुकमुख से रटने का मंत्र, रटने की बात नहीं, ये जपने की बात नहीं, अजप्पा जाप है ये, अंदर ही अंदर हर श्वास में। फिर मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं, अंदर नशा चढ़ जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होती है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, यानी कितने ऊंचे बाप के बच्चे हूं, यानी किस कुल की हूं मैं, ईश्वरीय कुल की हूं।
नहीं, पर्टिकुलर कोई मंत्र नहीं है, अपने स्मृति की बात है, सोचने की बात है।
हाँ। स्मृति से स्वरूप बन गया, वही मंत्र है, ये अभ्यास करने की बात है। तो मंत्र है मैं आत्मा हूं, मंत्र है मैं परमात्मा की संतान हूं।
अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सतयुग में आदि काल में 9 लाख से फिर सत्युग के अंत में 33 करोड़ होंगी, 33 करोड़ देवी देवताएं होंगी, तो अभी जो आबादी है 150 करोड़ के लगभग है, तो वो आत्माएं कहाँ होगी और इतना इनका रोल क्या होगा? दीदी, उनके उसके कनेक्टेड दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार हमने सुना है कि सत्युग के केवल 8 लाख आत्माएं होंगी, किंतु जो लोग आत्माएं इस ज्ञान में चल रही है वो तो देश विदेश में मिलाकर 8 लाख से कहीं ऊपर होंगे, तो मेरा प्रश्न है 8 लाख श्रेष्ठ आत्माएं के आने के बाद बाकी की श्रेष्ठ आत्माओं का क्या होगा?
अच्छा, ये वर्ल्ड क्या है, एक ड्रामा है। जैसे ड्रामा में क्या होता है, सब एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, ये वर्ल्ड को ड्रामा कहते हैं, स्टेज कहते हैं। ड्रामा है इसका मतलब कहानी है, कहानी है इसका मतलब एक्टर्स हैं, एक इस कहानी में हीरो हीरोइन है। तो जैसे ड्रामा में जब कोई फिल्म है या ड्रामा है तो हीरो से थोड़े एक्टर्स के साथ शुरू होते, धीरे 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 कहानी के अनुसार प्लॉट के अनुसार एक्टर्स आते जाते हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं कनेक्शन है उसके हिसाब से हिस्ट्री के हिसाब से आते जाते हैं। कहां से आ रहे हैं। जो आत्माओं का असली घर है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, तो आत्माएं वहां से धीरे धीरे, जैसा उनका तीन कारण होते हैं, जैसा उनके पुरुषार्थ की प्रालब्ध भोगने के लिए, प्रालब्ध पहले से जो संगम पर पुरुषार्थ किया है उसकी प्राप्ति, दूसरा जिन आत्माओं के साथ उनका पार्ट प्ले करने का है उनके साथ रोल, तीसरा प्रकृति का सुख, यानी जितना जितना प्रकृति सतो प्रधान है और आत्मा की सतो प्रधानता है, उस हिसाब से आत्मा नीचे आती है। ये सूक्ष्म कर्म फिलॉसफी सेल्फ मैटर और बाकी आत्माओं के साथ संबंधित होता है, उस हिसाब से आत्माएं धीरे धीरे साकार सृष्टि पर आती हैं। कहाँ रहती हैं? घर में रहती हैं, परम धाम में रहती हैं। तो इसीलिए धीरे 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 आबादी बढ़ती जाती है, ये वन वे ट्रैफिक है। परम धाम से आत्माएं यहाँ आती जाती हैं, जो आ गई वो दोबारा यहीं जन्म लेती हैं, बाकी नहीं आती जाती हैं। बाकी रही ये 9 लाख या 8 लाख हैं, वो शुरू में सब कोई नहीं आती ना, सब इतने सारे सिर्फ 9 लाख तो नहीं, और भी तो आत्माएं आती जाएंगी ना। तो पुरुषार्थ के अनुसार जितना जितना जिसने कर्म किया, करनी आपो आपनी, क्या नेड़े क्या दूर, कोई दूर पहले आ जाते हैं कोई पीछे आते हैं कर्मों के हिसाब किताब से। श्रेष्ठ कर्म वाली आत्माएं पहले आती हैं, साधारण पाठ वाली पीछे आती हैं, साधारण पाठ वाली भी पहले प्रजा बनती है साधारण, फिर जल्दी 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 उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो ये तो थोड़ा डिटेल में समझने की बात बराबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सब सेवा केंद्र पर जाएंगे और सुनते रहेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दीदी कि जैसे हम हिमाचल से आए हैं तो वहाँ देवी देवता आते हैं मनुष्य तन में और देवता का एहसास कराते हैं, तो यहाँ बताते हैं कि देवी देवता साधारण मनुष्य के जन्म ले चुके हैं अभी, तो वो देवता कैसे ये सब भविष्यवाणियां और सच्चाई बता दे देते हैं।
तो ये वास्तव में जो जिसमें किसमें देवी प्रवेश होती है, किसमें हनुमान जी प्रवेश हुए, किसी में फलाना महात्मा जी अथवा कोई संत आ गए, या आत्मा की जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं थी, वो जैसे कि एक फिल्म है, ये रिकॉर्ड आत्मा के अंदर भरा हुआ है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो आपके पास जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर आत्मा जिसने अभी जिसमें देवी आई, हमेशा उसका वो रोल नहीं चलता, कभी कभी तो वो जैसे कि पास्ट बटन दबाया, प्रेस किया, और वो जो पहला 400 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले, वो जो संस्कार था, वो संस्कार एक शक्ति रूप में अनुभव करा रहा है। अब उस आत्मा का ही अपना ओरिजिनल परफेक्ट रूप जो था, वो अभी जैसे इमर्ज हो रहा है। वैसे देखे तो वो कोई आत्मा जो है, कोई उसमें कर्म में, संस्कार में, व्यवहार में कोई विशेष नहीं है, क्योंकि अभी तो वो आत्मा भी चलते 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 अपनी जो स्टेज थी उससे तो नीचे आ गई ना। तो देवी देवताएं भी धीरे धीरे अपनी दिव्यता, धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कला होती है, धीरे 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 उसकी कला कम होती है, ऐसे आत्माएं धीरे धीरे कम होते होते पवित्रता की शक्ति कम होती है, वाम मार्ग में चले जाते हैं। कहा जाता है अंगल अंगल चट्टी नौमण माखी घट्टी, 9 मणमी माखी होगी ना, एक एक उंगली खाते रहेंगे ना, 9 मण माखी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा 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 खाते 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 पुण्य का काटा और तो जमा किया नहीं, आखिर कहाँ पहुंच गए। तो देवता से फिर मनुष्य, फिर मनुष्य से फिर भगवान को देवता बनाना पड़ता है। पतित पावन, तो पतित बने या तो पावन बनना पड़ता है। दुख हरता सुख करता, दुखी बने या तो सुखी बनाना पड़ता है। ये खेल है, समझो।
जब घरों में जब बच्चों को कहते हैं ना कि आप पढ़ो, और माँ बाप कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे कहते हैं क्या लेक्चर देते रहते हैं आप, तो गुस्से, तो वो बच्चे पढ़ते नहीं है, माता पिता मतलब उनको गुस्सा आता है, उसके लिए करे क्या।
अभी देखो क्या है कि हमको भी बच्चों को भी सिखाने के लिए उस समय मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, ये देह का भान उनको ब्लॉक करता है। ये उनको पता है कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, पढ़ाई पढ़ेंगे तो होशियार होंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो पास विद ऑनर होंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे सब लोग प्यार करेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हो, खेलते रहते हो, सारा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, सारा दिन जो है क्या, तो हम पहले उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको टेप करते, उनको कनेक्ट करते हैं, और अगर हमने नेगेटिव एनर्जी को प्रेस किया तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी की जो रिसेप्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। हमने बेशक भावना बड़ी अच्छी रखी है, प्यार से कहा है, परंतु प्यार से नहीं कहा, अंदर मैं माँ हूँ मैं बाप हूँ उस अधिकार से कहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब देखो ना नहीं तो आप प्यार से, हे आत्मा तू है तो बहुत अच्छी, अंदर पहले मन में, और आत्मिक भाव से भगवान के ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, फिर उनको जैसे सामने ईश्वर के बच्चे हैं, और प्यार से उनकी विशेषता पहले सुनाओ, देखो तुम इस बात में इतने अच्छे हो, इस बात में इतने अच्छे हो, पढ़ाई पढ़ेंगे तो कितने अच्छे हो जाएंगे, सब प्यार करेंगे, तो क्वालिटी से उनकी कमी वो अपने आप जीत लेंगे, पर अगर हमने क्रिटिसाइज किया तो वो जो कम उनकी भावना जो होती है ना, लेक्चर देते रहते हो कि वो लेक्चर दिखाई पड़ता है, भावना नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए पहले मन में भावना क्रिएट करेंगे तो उनकी भावना आपकी भावना को पकड़ेगी। ऐसे ही हमारे किसी, आप देखेंगे जो भी कोई भगवान के घर में यहाँ आए, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, बड़ी दादियों ने, कोई देवता तो नहीं आए थे, यंग आए, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, कोई 25 साल का, यूथ अभी भी कोई आते हैं। आप एक दो को बच्चों को घर को करैक्टर संभालने में आपको चिंता होती है, पता नहीं लड़की का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, पता नहीं क्या हाल होगी, यहाँ यंग एज हो या बुजुर्ग हो या छोटे हो या बड़े हो, कहाँ से ताकत आ जाती है, जो जरा भी चिंता नहीं रहती है, निश्चय रहता है कि ये हमारी बच्ची या हमारा बच्चा हमारे कुल का नाम बाला करेगा, हमारे कुल को कलंक नहीं लगने देगा, कहाँ से ताकत आती है। शरीर तो वही है, दुनिया भी वही है, वातावरण भी वही है, किसने शक्ति भरी, कौन सी शक्ति है, ये भावना की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है, ये शुभ कामना की शक्ति है, अपनत्व नहीं है, मोह नहीं है, प्रेम अलग चीज है, मोह अलग है, मोहवश कहते हैं तो गुस्सा आता है, आप मोह है ना नहीं मानते तो गुस्सा आता है, प्रेम है और भावना अच्छी है गुस्सा नहीं आएगा, उनको प्रेम से ध्यान दिला सकेंगे इस बात को।
चलिए नेक्स्ट। जैसे कहा जाता है कि ना बीते हुए कल को याद करना है, ना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना है, तो ना तो फिर वर्तमान में सोचना चाहिए, वर्तमान के बारे में सोचना है, क्या वर्तमान है तो कितने समय के लिए है, तो वर्तमान फिर भूत हो जाएगा, फिर भविष्य जो है वर्तमान में आ जाता है, तो इसीलिए क्या सोचिए क्या ना सोचिए।
नहीं नहीं, अभी आप पहले जाते, आप जो सोच रहे हैं ना, वर्तमान भूत, भूतकाल है, भूत है ही भूत, पास्ट जो है ना, पास्ट हो गया, पीछे चलने से उसमें से सीखा क्या, सोचने की बात, सोचना माना चिंता करना, सोचना माना पश्चाताप करना, और सीखना माना गुण ग्रहण करना। तो ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता, याद रहता है, परंतु कौन सा लेसन सीख लिया उससे, हमने लेसन कौन सा सीखा है, जब ये लेसन सीख लिया ना तो पास्ट तो अच्छी अच्छी बात याद, अच्छी बात आई ना, अच्छा ही सीख लिया ना, तो खराब नहीं, परंतु और ही बहुत अच्छा सीखा है, इसी भावना से। तो जब हमको ये आ कि हमने बहुत अच्छा सीखा है, उसी भावना से सीखा है, तो भावना का बल बड़ा जबरदस्त, अपने आप में पश्चाताप नहीं होगा। फिर प्रेजेंट जो है, क्योंकि जो हमारा पास्ट था उसका रिजल्ट हमारा प्रेजेंट है। अगर हम पास्ट को ही सोच रहे हैं तो प्रेजेंट मिस कर रहे हैं ना। इसलिए प्रेजेंट में सोचने का मतलब प्रेजेंट पर ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है, तो फ्यूचर की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि पास्ट सोच रहे हैं तो फ्यूचर की चिंता है, क्योंकि प्रेजेंट पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इसलिए बेशक लक्ष्य फ्यूचर का सोचो, कोई बिजनेस करने का है, कोई प्लान बनाना है, कोई परिवार की परिस्थिति को संभालना है, तो सोचना तो है
लेकिन चिंता नहीं करनी है। सोचना जरूर है लेकिन चिंता नहीं करनी,
विचार करो पर चिंता नहीं करो।
नेक्स्ट प्रश्न है, दीदी आपका कहना है कि इंसान इंसान की योनि में ही पुनर्जन्म लेता है, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार जो भी किया हुआ है तो इंसान की योनि में ही जन्म लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु है, पशु पक्षी प्राणी है, उन्होंने क्या कर्म किया है जो वो फिर उसी इसमें जन्म लेना पड़ता है या क्या है?
ओके, पहली बात यह है कि,
और ऐसा जन्म क्यों मिलता है उनको?
ठीक है, पहली बात यह है कि ये जो कहते हैं ना 84 लाख योनियां एक जन्म इंसान का लिया, और ऐसा कुछ कर्म किया जो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, 84 लाख। अब एक जन्म में आप इंसान कितने साल तक जिएगा? चलो 100 साल 150 साल तक भी जी गया, ज्यादा से ज्यादा, क्या सारा समय पाप कर्म ही करता रहा क्या? ऐसा तो नहीं होता। और उसकी सजा 84 लाख योनियां भोगनी है तो कितने लाख साल चाहिए? उसमें भी समझो कछुआ बन गया कितने सौ साल, एक पेड़ बन गया कितने सौ साल तक रहेगा, एक खूंटी बन गया, कहते ना अहंकार किया ना तो खूंटी बन जाएगा, हथौड़े लगते रहेंगे, किल्ली बन जाएगा, हथौड़े लगते रहेंगे, वो जितने साल तक कितने सौ, एक महल में अथवा किले में किल्ली बन गई तो कितने सौ साल तक वो किल्ली रहा क्या, दीवार ही रहा क्या? ये तो मनुष्य पाप कर्म न करें, एक डरावा दिया है बचाने के लिए। जैसे माँ कहती है ना, देख बच्चा दीवार में हुआ है तुझे खा जाएगा, सॉकेट में उंगली ना डाल, इसमें स्पाइडर बैठा है, बच्चा स्पाइडर से डरता है। तो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने मनुष्यों को जैसे बच्चों के भले के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देते पर डरावा देते हैं, तो 84 लाख को 84 लाख कर दिया। भाषा का बात है, लख 84 यानी सृष्टि के चक्र में आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। अलख निरंजन परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता, अलख निरंजन, लख देखना, लाख नहीं। फिर क्यों जाते जन्म लेते? भी पाप कर्म की सजा भोगनी है। तो इस दुनिया में दो तरह के मनुष्य होंगे, एक तो जो 84 लाख योनि भोग करके, चलो जेल भोग ली, चलो कितने लाख भी रहा जेल भोग ली, फिर मनुष्य बने, हिसाब किताब पूरा हुआ उनका, कोई अंधा लंगड़ा कोड़ा काणी नहीं होना चाहिए ना। दूसरे जो ऊपर से आ रहे हैं, उन्होंने तो कोई पाप कर्म किया नहीं, तो किसकी सजा? के पिछले कर्मों का फल है। तो क्या इतना कोई अन्याय है कर्म के हिसाब किताब में जो इतना दुख भोगना पड़े इंसान में? आज इंसान भी घोड़ा की तरह रिक्शा चलाते हैं, तो एक दो सूटकेस भी रखेंगे, दो बच्चे भी साथ में बैठ जाएंगे, खुद मियां बीवी भी बैठ जाएंगे, घोड़े की तरह गधे की तरह उनको चला रहे हैं। तो इंसान इंसान में रहता है जन्म, परंतु जिसका कर्मों के हिसाब किताब से ऐसा जन्म मिलता है, ये प्रकृति की फिर चीजें, कीड़ा मकोड़ा मच्छर मक्खी, ये प्रकृति की रचना है। अब आप देखेंगे आपने गंदगी रखी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, पानी डाला गंदगी रखी, मक्खियां आ जाएंगी, चीजें रखी कीड़े हजारों इकट्ठी हो जाएंगी। आपको वातावरण को स्वच्छ रखो, जीव जंतु नहीं पैदा होंगे। तो कोई प्रकृति जब तमो प्रधान होती है तो ये प्रकृति के जीव जंतु रचना है, बाकी उसमें मनुष्य वाली आत्मा नहीं है। अच्छा, उनमें भी फिर पशुओं में भी पक्षियों में भी अपना हिसाब किताब है प्रकृति की लेन देन का। हाँ, चौपाया चौपाया बनता है, जरूरी नहीं है कि घोड़ा सदा घोड़ा ही रहे, हाथी सदा हाथी रहे। चार पाए वाला कोई भी चार पाए में जाके लेता है, जैसे इंसान है, इंसान है किसी भी देश में जन्म लेगा, कहीं स्त्री या पुरुष कोई भी चोला धारण करेगा। तो ऐसे पशु पक्षियों में भी अपनी योनि में परिवर्तन होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल अलग है। वो कीड़ी जाकर के हाथी नहीं बनेगा, मछली जाकर के घोड़ा नहीं बनेगी, वो अलग एनर्जी लेवल अलग है। प्रकृति की एनर्जी शक्ति, आत्मा की शक्ति इंसान वाली और परमात्मा की शक्ति, तीनों की शक्ति में अंतर है। इसलिए वो जन्म मरण न्यारा है, निराकार की शक्ति सर्वशक्तिवान है, जन्म मरण से न्यारा है। इंसान की शक्ति प्रकृति के प्रभाव में आती है, जन्म मरण में आ जाता है। प्रकृति प्रकृतिक की शक्ति से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वृद्धि होती रहती है। ये थोड़ा और गहराई से, एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी बात है, परंतु समय की सीमा रखते हुए इतना ही बताती हूँ।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हम किसी से प्यास से बात करते हैं तो अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, एक बार प्यार से बात किया, दूसरे बार किया, तीसरे बार किया, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता, तो करना क्या चाहिए? और रहना तो उन्हीं के साथ है।
हाँ, बराबर। प्यार से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखी है, और जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहां आप मंगता बन गए हैं। मंगते को क्या मिलेगा? प्यार से बात कर रहे हैं तो मैं तो प्यार से बात कर रही हूं, भले दूसरा नहीं कर रहा है ना, मैं अपने प्यार की वैल्यू को कम क्यों करूं? मैंने प्यार से ही बात किया, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं ये बदल जावे या मुझे भी तो प्यार दे दे। मैं इतनी इज्जत देती हूं, मुझे भी तो इज्जत देवे ना। तो अंदर सूक्ष्म में दातापन के बदले भिखारीपन का संस्कार, एक्सपेक्टेशंस, और जहां एक्सपेक्टेशंस आई वहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लाइफ में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दुख होता है। उनके साथ रहते हुए भी मुझे क्या रहना है, एक बेहद के ड्रामा में है, ये ड्रामा है। तो ड्रामा में मेरा अपना पार्ट जो है वो मधुरता का ही है, मेरा अपना पार्ट रॉयल्टी का है, मेरा पार्ट क्षमा भाव का है, मेरा पार्ट सेल्फ रेस्पेक्ट का है। या फिर कोई का व्यवहार ऐसा है, डिज्नीलैंड है ये, एक बेहद का नाटक देख रही हूँ, तो वो अपने आप को एंटरटेन करना शुरू करेंगे तो उनके साथ रहते हुए उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, उनका स्वभाव बदल जाएगा। प्रभाव में आते हैं स्वभाव का असर पड़ता है, अपने स्वभाव की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए अगर ना हम अपने गुण को क्यों कम होने दें? नेचुरली उनके गुण का अवगुण का असर मेरे पर नहीं पड़ा तो उनके गुण की अवगुण की शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए धैर्यता भी चाहिए, एक्सपेक्टेशन से फ्री भी होना है और सेल्फ रेस्पेक्ट में रहने का है।
और भी वैसे है लेकिन टाइम
10 मिनट और सुना सकते हैं,
बैठ सकते हैं सब या पूरा करें? हाँ, 10 मिनट्स बैठेंगे। ओके,
क्योंकि देर से शुरू किया ना हमने, समझा, क्योंकि पहला सेशन देर से खत्म हुआ है, फिर भोजन खाने में टाइम लगा है, इसीलिए ना।
ठीक है, हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, लेकिन एक व्यक्ति सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने को बहुत बदलता जा रहा है और सब कुछ सहन भी करता जा रहा है, क्या ये ठीक है?
अंधेरा होता है ना घर में, एक ही दीवा, एक बत्ती जगाते हैं, अंधेरा मिट जाता है, एक ही बत्ती जगती है। बदबू होती है, एक अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू आ जाती है। टेंशन होती है, एक खिड़की खोलते हैं फ्रेश एयर हो जाती है। एक दीवा, एक बीज पेड़ बन जाता है, घर की छाया बन जाता है। सहन करने की बात नहीं है। अगर ये कहें सहन करता रहता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सेवा कर रहा हूं, दूसरी आत्माओं को भी ज्योत जगाने की सेवा कर रहे हैं। तो एटीट्यूड चेंज करेंगे तो सहन करने की बात नहीं होगी, स्वमान में टिक करके सेवा भाव आ जाएगा, तो अंदर खुशी रहेगी। नेक्स्ट,
आपके ज्ञान के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व परम धाम ब्रह्मलोक में बताया है, जबकि धर्म सभी ग्रंथ शास्त्रों धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर का व्याख्यान कण कण में विराजमान बताया है, कृपया इसके बारे में समझाएं।
अच्छा, तो प्रकृति की रचना, क्योंकि उन्होंने आत्मा परमात्मा प्रकृति एक कह दिया ना, तो कण कण में प्रकृति है, परंतु प्रकृति चेतन नहीं है। परमात्मा सत्त चित्त आनंद है, धूल का कण आनंद नहीं है, चेतन नहीं है। कण कण में है तो भगवान हमारे पैरों के नीचे है क्या? हम मूर्ति को सामने रख करके भगवान के महावाक्य संतों ने जो बोले हैं, गुरुओं ने जो बोले हैं, उनको मत्थे पर रखते हैं, और भगवान कण कण में है उनको पैरों के नीचे रखते हैं। थोड़ा सोचे तो सही, कण कण में है तो हम उनके पैरों अंदर पैरों के नीचे दबा के चल रहे हैं। परंतु ये भाव जो था सर्वव्यापी का, चार कारण थे। पहली बात ये थी कि मनुष्य पाप कर्म न करे, कहते भगवान देख रहा है, सब जगह भगवान देख रहा है, तो देखने के लिए सब जगह व्यापन होने की जरूरत नहीं है, देख रहा है। आज टेलीविजन में आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, समुद्र के नीचे क्या है, आकाश में ऊपर क्या देख रहे हैं, तो भगवान के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो दूर बैठे देख सके। देखने के लिए व्यापक होने की जरूरत नहीं है, देख रहा है तो आप कर नहीं रहे, वो देख रहा है तो कर नहीं रहा, वो देखे पर नजर ना आवे, वो देखने वाला यहां नहीं है तब देख रहा है, परंतु साक्षी होकर देखता है। दूसरी बात, फिर डर के मारे कि ताकि मनुष्य पाप ना करे, छिपा के पाप ना करे। दूसरी बात प्रेम, जिसके साथ बहुत प्यार होता है, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, अरे तू तो मेरे नैनों का तारा है। अब 6 फुट का बच्चा माँ के नैनों का तारा कैसे बन जाएगा, दिल का टुकड़ा कैसे बन के बैठ जाएगा? पर प्यार की भाषा है, भक्तों की, संतों की, ऋषियों की प्यार की भाषा थी भगवान हमारे हृदय में। आज अपना हृदय खोल के तो देखो, हमारे अपने हृदय में वो भावना है या ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर भाव है, भगवान है या कि नफरत है? नहीं, वो प्यार की भावना थी, इसलिए कह दिया गया। तीसरी बात, मंदिर की मूर्ति है या गुरुद्वारा है या चर्च है, वो जो मूर्ति में भावना रखी है ना, भावना बैठ जाती, मेरे भगवान ने बात सुनी था। पहले वो पत्थर है, मंदिर में जब तक मूर्ति नहीं खरीदी है, दुकानदार उस पर चढ़ करके दुकान निकाल रहा है, मूर्ति आ गई सामने, पूजा करने शुरू कर देते। फिर मूर्ति आई मंदिर में, तब तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तब तक पूजा नहीं होती। इसका मतलब पत्थर है ना, प्राण नहीं है ना उसमें, किसने प्राण डाले? बड़े धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठान हुआ, मंदिर की मूर्ति बन गई, भावना ने भगवान बनाया। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले, यहां बैठा है तो किसके पास जाना चाहती हूं? ऊपर वाला देख रहा है, वो तो यहां सब जगह बैठा, ऊपर वाला कैसे दे रहा है? भगवान अपने घर ले जा, यहां भगवान बैठा है, मैं भगवान के घर जाना चाहती हूं। नहीं, भावना की कर। और चौथी बात थी, सबके प्रति प्रेम भाव रहे तो कहा सब में भगवान देखो, यानी भगवान की संतान देखो। बाकी याद करने में, हे पिता घर में ले चल मुझे अपने पास, छुटा मेरी बुद्धि योग, हटा अपने में जुड़ा, सब में भगवान बैठा तो बुद्धि हटाने की क्या जरूरत? तो थोड़ी समझने की बात है।
हम सब आत्माएं परमधाम में किस नाम से जानी जाती है?
परमधाम में किस नाम से जानी जाती है? जब परमधाम में है तो कोई भाषा नहीं है, ना नाम है ना भाषा है। परमधाम शांति धाम है, साइलेंट का वर्ड है, निर्वाण धाम है। वो अभी हम कंट्रास्ट में कह रहे हैं, वहां जैसे हम बीज रूप में पड़ी हुई हैं, तो परम धाम में अब भी कहेंगे बीज रूप आत्माएं, सप्त स्वरूप आत्माएं, बिंदु रूप आत्माएं, अंडाकार आत्माएं, अब भी नाम हम देते हैं। बाकी वहां तो एनर्जी है ना, बस स्टार्स है ना, चैतन्य सितारे सितारे हैं, नौ लख तार का मंडला, यानी वो आत्माएं सितारों की तरह मंडल है आत्माओं की दुनिया जैसे।
क्या श्री कृष्ण जी को कंस को माफ कर देना चाहिए था?
अवस्था में देखा जाए
तो माफ करना चाहिए, कृपा करुणा भाव।
अब ये भी थोड़ी समझने की बात है, कंस कौन और कृष्ण कौन, और कब था कंस और कब था कृष्ण? कंस कौन, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, श्री कृष्ण कौन था? तो वास्तव में जैसे भगवान ने असुरों का गला काट दिया, अब श्री कृष्ण जिनको विष्णु जी कहते हैं असुरों का गला काट दिया, तो असुर कोई ऐसे तो नहीं बड़े दांतों वाले लंबे सींग वाले असुरी वृत्ति वाले, तो अस्कामी दुशासन, जिसके शासन में दुष्टता है, दुशासन दुर्योधन, युद्ध में दुष्टता की पॉलिसी, शिशुपाल बच्चों के पालने की वृत्ति, काम विकार, कंस अहंकारी, धोखा, ये संस्कारों को भस्म किया भगवान ने, क्षमा करने की बात नहीं, ये तो अंदर के जो असुर थे ना उनको मारा, कैसे? स्वदर्शन चक्र से, और कोई हथियार नहीं था, स्वदर्शन यानी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वदर्शन मैं आत्मा हूं, सुंदर स्वरूप आत्मा हूं। जब ये रियलाइजेशन हुआ ना, तो अपने ही अंदर जो शाम के संस्कार थे, जो आत्मा के आत्मा काली बन गई थी, विकारी बन गई थी, असुरी वृत्ति वाली बन गई थी, उसको खत्म किया, उसका गला काटा। अब ये थोड़ा फिर कभी महाभारत रामायण गीता भागवत का सार फिर कभी सुनाएंगे, परंतु वास्तव में अपनी कमियों को,
मैंने ये प्रश्न पूछने का मुझे लगता है कि तात्पर्य ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है उनको दंडित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
नहीं, गलत कर रहा है तो अहंकार से गलत कर करेक्ट हो भी नहीं सकेगा, अहंकार से नहीं करेक्ट हो सकेगा, अहंकार से डबल बढ़ जाता है, इसीलिए दिखाया ना रावण को सिर कटता था, एक एक बूंद गिरती थी 100 और निकल आती थी। अब इसका कनेक्शन है, मतलब किस भावना से हमको क्षमा करना है, क्षमा करके रहे मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, वो अहंकार में माफ तो हुआ ही नहीं, तो इसमें तो भावना की बात भी है, और साथ साथ बराबर कोई भूल करता है तो क्षमा करनी है तब जब मेरे अंदर पहले समझ आवे कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है, ताकि उसको मदद कर सके, शिक्षा नहीं देवे पर मदद कर सके दूर कमी को दूर करने की।
दीदी नेक्स्ट प्रश्न है, यंग एज में, यंग आयु में हमें कैसे जीना चाहिए? ये आयु एक अहम स्टेज है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, तो कृपया करके मार्गदर्शन दें।
तो यंग एज में तो और ही बहुत क्रिएटिव, एक्टिव, एम्बिशियस, गुड विशेस, गुड फीलिंग, एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए ना। यंग एज इसलिए है ताकि आगे के लिए दूसरों को भी प्रेरणा देने वाले बने, और वो तो जैसे अभी यहाँ पर जितने भी इतने यूथ युवा के प्रोग्राम, वंडरफुल प्रोग्राम और वंडरफुल लाइफ बन जाती है, तो इसमें किस प्रकार से जीना है, उसमें जीने की कला, दिव्यता जब हमारे अंदर आ जाती है तो सेल्फ रेस्पेक्ट से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, क्रिएटिविटी, तो यंग एज में और ये क्रिएटिव होना जरूरी है ताकि आगे के दूसरों को भी फायदा हो और स्वयं की भी जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े।
शांति के दाता जो है वो हमेशा शांति बरसा रहे हैं, अगर हमें शांति की अनुभूति नहीं हो पा रही है, मेरा तार उनके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो कितने देर तक कोशिश करना चाहिए? ये तो हमें हमारी कमी है।
नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि भी चेतन बन जाता है। कहा जाता है पत्थर पर भी घड़ा रखते 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 उसमें टोया बन जाता है, उसमें जगह बन जाती है पानी चुल्लू लेने की। तो अभ्यास अगर नहीं होती है शांति, ऐसा है नहीं, परंतु थोड़ा धीरज चाहिए। अगर जिगर में ये भावना है कि शांति मेरा स्वधर्म है, तो शांति की अनुभूति होती है। क्यों? कि आपका ये स्वधर्म है, आपका स्वभाव है। प्रैक्टिकल में देखे, कोई गुस्सा करता है ना, अच्छा लगता है क्या? ये हमने गुस्सा किया, कभी गुस्सा करके कभी नशा चढ़ता है, कमाल है मेरे गुस्से की, ऐसा वंडरफुल मैंने गुस्सा किया जो कमाल करके दिखाया, ऐसा होता है क्या? और ही पश्चाताप होता है। दूसरा गुस्सा करता है, वाह भाई तूने तो बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा कभी कहते हैं क्या? नहीं। तो स्वभाव ही हमारा शांति है, परंतु क्या है कि हमको एकदम किसी चीज की, किसी की अशांति का असर ना होवे, ये शक्ति भरने की बात है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए।
अगर हर युग 1250 वर्ष का है, तो कलयुग को चलते 2500 वर्ष से अधिक कैसे हो गया?
नहीं, 2500 वर्ष नहीं हुआ, ये टोटल जो चक्कर ही है, सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन कहलाता है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कहलाती है, और उसमें चार पहर है, 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर और 1250 कलयुग। ये अनादि चक्कर में कितने ही चक्कर बीत गए हैं ना, तो 24 घंटे का सूरज कोई 24 घंटे का तो नहीं है ना, पर हर 24 घंटे के बाद सूरज चढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि उम्र सूरज की 24 घंटे ही है, नहीं। तो ऐसे चक्कर 5000 साल का है, उसमें द्वापर से लेकर के दुख की दुनिया शुरू हुई, इसलिए कहते हैं कलयुग। बाकी कलयुग तो कलयुग द्वापर के बाद शुरू होता है।
क्या परमात्मा को जानना आवश्यक है?
अगर सुख शांति चाहिए, प्रेम आनंद चाहिए और सनाथ बन के रहना है, तो पिता को जानना जरूरी है। अनाथ बन के रहना है तो कोई बात नहीं ना, अनाथ को तो अपने माँ बाप का पता भी नहीं होता कि कौन है, ऑर्फन्स को तो नहीं पता होता। तो हमको ऑर्फन वाली लाइफ नहीं चाहिए, हमको सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चाहिए। तो इसलिए भगवान वो नहीं जो मुझे दंड देगा, ऑलमाइटी है दंड देगा, डरने वाला भगवान, डराने वाला भगवान नहीं चाहिए। पिता है मेरा, फ्रेंड है मेरा, बिलावेड है मेरा, तो फिर परमात्मा को किस रिश्ते से वो जानना चाहिए।
संगम युग
लास्ट क्वेश्चन है ना,
लास्ट। हाँ, संगम युग कब से शुरू हुआ है? क्या ब्रह्मा बाबा का जन्म संगम युग में हुआ है? कितने समय तक कलयुग अपना प्रभाव इस संसार पर रहेगा? कलयुग का प्रभाव
तो संगम है, जैसे सवेर रात खत्म होती है, सवेर शुरू होता है ना, प्रभात होता है, दिन का ही पार्ट संगम कहा जाता है। जैसे प्रभात है तो दिन शुरू हो गया पर रात भी है, तो संगम का मतलब कलयुग खत्म होकर सतयुग शुरू होता है। तो जैसे हमारा ये जन्म संगम युग में है, यानी अंत कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी साधारण इंसान थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, आपने हिस्ट्री सुनी होगी, बड़े दानी, बड़े भक्त भावना वाले थे। तो उनका भी जन्म हमारी तरह इस जन्म में रहते दोबारा जन्म हुआ, दोबारा जन्म माना रियलाइजेशन। हमारा भी जन्म जो है, हम तो 16 साल के थे, फिर ये हमारा जन्म हुआ है। पहले 16 साल तो माँ बाप वाले जिस्म वाला जन्म ही था, उसके बाद अरे मैं परमात्मा की संतान हूँ, सचमुच मैं भगवान की संतान हूँ, मैं शरीर से नारी आत्मा हूँ, कितनी ऊंची बात है, ईश्वर की संतान हूँ मैं। और जिस समय मेरे को ये नशा था, मुझे इतना अच्छी तरह से याद है, मैं अपने कॉलेज से आ रही थी, मेरे हाथ में बुक्स थी, और ये रियलाइजेशन, मैं आत्मा, सचमुच मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये संकल्प आते ही, मैं जैसे ही बस से उतरी, मैं आश्रम जा रही थी, मेरे पैर धरती पर नहीं, मैं जैसे कि पत्ते हवा में पत्ते उड़ रहे थे, मेरे पैर थोड़े थोड़े ऊंचे थे इतना, तो पत्ते मेरे पैर को लगे, तो मैंने कहा अरे दुनिया क्या कहेगी मैं कैसे चल रही हूँ। तो एकदम जैसे पैर नीचे आके पड़े, जैसे नहीं कभी कभी सोए हुए होते हैं तो अचानक आपका हाथ यहाँ होता है, तो अब दब से उसमें बेड में, ऐसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब हम मनुष्यों की बात सोचते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, तो फरिश्ते वाली स्टेज हैवी पत्थर वाली स्टेज हो जाती है। और ये रियलाइजेशन, मैं भगवान की संतान हूं, मैं आत्मा हूँ, सचमुच मैं ईश्वर की संतान हूँ, आपको देवान से न्यारी कर देती।
अच्छा, लास्ट ये प्रश्न है दीदी। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसे दोस्त थी जिसने मेरे घर और मुझे अशांत कर और मेरे घर और मेरा मुझे अशांत कर दिया, जिसके कारण मेरा विद्यालय में योग नहीं लगता। उसे देखते ही मेरा सब कुछ किया भंग हो जाता है। तो मैं ऐसे क्या करूं कि उसे देखकर अशांत ना हो, मेरे मन योग में लगे?
हाँ, तो ऐसे समझना चाहिए कि इस आत्मा का दोष नहीं है, इसने अशांत किया। क्यों अशांत किया? इसका मतलब मेरी फाउंडेशन कच्ची थी ना, यानी उसने मुझे शेक किया और मैं शेक हो गई, मैं पपेट हूं क्या किसी के हैंड्स की? यानी उसने मुझे परेशान किया और मैं परेशान हो गई, मेरी अपनी शान कहां गई? अब उसको मैंने देखा, पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई कैसे स्वभाव वाला होता है, कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है, कोई फेल होता ही रहता है, कोई क्रिटिसाइज ही करता रहता है दूसरों को, खुद पढ़ाई नहीं पढ़ता, तो उसकी पढ़ाई को ना देख के मैं अपनी पढ़ाई को क्यों छोड़ूं? तो इसमें भी जैसे कि ये उसको मैं सोच रही हूं ना, इसलिए उनकी कमी मेरी कमी बन जाती है। तो मुझे दूसरे की कमजोरी अपनी कमजोरी नहीं बनानी है, मैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहा हूं ना। उसने भूल की है, मैं अपनी भूल क्यों, अपने अंदर वो उसकी भूल को अपने आप को याद करके धूल में क्यों मिलाऊं? मैं तो हीरा हूं, मुझे हीरे में किसी दूसरे की धूल मुझे ढक नहीं सकती, मैं चमकता सौभाग्यशाली आत्मा हूं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरा एग्जाम लेने के लिए है, ये एग्जामिनर है और मुझे भी पास होके दिखाना है, ये एग्जामिनर है मेरा, बराबर देखती है कि मेरी स्टेज कैसी है, तो मैं अपनी स्टेज को ऊंचा क्यों नहीं रखूं? तो सोचने का तरीका बदलेगा तो सोच समझ और कर्म तीनों बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा, संस्कार बदल